Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। सुनते रहिए दिल से दिल तक पॉडकास्ट विद अभिनंदन जिंदल।
दिल से दिल तक के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 6 साल की उम्र में उड़न खटोला नाम दिए जाने पर शायद उन्हें खुद को नहीं पता होगा कि आज हम सभी उन्हें इसी नाम से जानेंगे। आज है हमारे साथ रुक्मणी दीदी। आइए जानते हैं उनके इस खूबसूरत और लंबे सफर को उन्हीं की जुबानी। ओम शांति दीदी।
ओम शांति
दीदी। आपके बारे में सब जानते ही हैं कि आप ब्रह्मा बाबा के टाइम से हैं, आप बहुत सीनियर हैं। तो सबसे पहले थोड़ा आप ज़रा बताएंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई ब्रह्मा कुमारी में।
1958 में कलकत्ते में एक प्रदर्शनी लगी थी मेन बड़ा बाजार में, और उस समय ब्रह्मा बाबा भी थे, अम्मा भी थी, मधुबन में थे। तो उस समय हमारी लौकिक आयु 6-7 साल की थी। तो एक मंदिर में प्रवचन हो रहा था, तो लौकिक माता जी के साथ उस मंदिर में गए थे। तो वहाँ बहनों का जो प्रवचन सा सत्संग कहें दुनिया के हिसाब से, तो वो चल रहा था। तो वहाँ बहनों ने जो उस समय सुनाया, ये क्योंकि आज से 60 साल पहले ओम मंडली का नाम तो था ही, पर ओम शांति का उच्चारण जब करते थे तो लोग ऐसा सोचते थे ये ओम शांति वाले कौन है। पर उस समय भी हम देखते थे कि बहनें सचमुच में जब योग कराती थी, कमेंट्री उस समय नहीं थी, हम लोग के समय में योग कराती थी, और योग में कोई ना कोई बहन गीत गाती थी। तो उस समय भी हम लोग जब मेडिटेशन करते थे, योग करते थे, उस समय भी हमें बहुत अच्छा लगता था और शांति का अनुभव होता था। कलकत्ते की बात है, क्योंकि शुरू से कलकत्ते में रहे बाल्यकाल से, तो वहाँ पर ही बाबा का परिचय मिला। और परिचय मिलने के साथ जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, तो बाबा भी कहते हैं ना कि बच्चों को कुछ समझ और कुछ बाबा से जो प्राप्ति का अनुभव, वो आस्ते आस्ते होने लगा। तो उससे क्या था, हमारी लगन और बाबा के प्रति बढ़ती गई, क्योंकि हम लोग को उस समय ज्ञान कुछ समझ में नहीं आता था। बहनें उस समय भी योग बहुत पावरफुल कराती थी, क्योंकि ज्ञान उस समय लोग सुनना नहीं चाहते थे आज से 60 साल पहले, क्योंकि लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियाँ थी। ब्रह्मा कुमारियाँ घर बार छोड़ाती हैं, भाई बहन बनाती हैं, जादू करती हैं, सुरमा डालती, बहुत बातें थी। तो परिवार में भी जब अफवाह सुनते हैं तो परिवार वाले भी, माता तो ज्ञान में चलने लगी, पर पिताजी और भी, परिवार बहुत बड़ा था, 200-250 का परिवार, इकट्ठी फैमिली रहती थी, तो उनको उस समय ये ज्ञान की बातें एकदम अच्छी नहीं लगती थी। और उस समय से, शुरुआत से हमने देखा बाबा के इस ज्ञान में विशेष पवित्रता के ऊपर जोर दिया गया, और विशेष भोजन के ऊपर, शुद्ध भोजन के ऊपर, क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, तो शुद्ध भोजन के ऊपर भी बहुत विशेष प्रकाश डाला जाता था कि हमें शुद्ध भोजन करना है, क्योंकि बंगाल में शाकाहारी बहुत कम लोग होते, और हमारे तो लौकिक में भी दूसरी चीज़ कभी खाई नहीं, शाकाहारी भोजन, शुद्ध भोजन करते अभी तक भी। तो इसलिए लोगों को उस समय ज्ञान अच्छा नहीं लगता था, एक तो घर बार छोड़ाते हैं और भोजन शुद्ध करने करके खाने के लिए बोलते हैं, शुद्ध भोजन करो तो मन अच्छा रहेगा। तो उसके कारण बहुत बातें यज्ञ में कहें, सेंटरों में भी कहें, बहुत परिस्थिति बातें आती रही, पर सब कुछ देखते हुए हमें उस समय भी बाबा से प्यार, यज्ञ से प्यार, मधुबन से प्यार, दादियों से प्यार रहा। और उसी प्यार पालना से अभी तक चल रहे हैं।
जी 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 जी, बहुत बढ़िया। दीदी, आप ब्रह्मा बाबा के साथ रह चुके हैं, तो कुछ अपने अनुभव आप बताना चाहेंगे लोगों को कि तब कैसा था माहौल, कैसा था, क्या क्या आपने सीखा?
ऐसे तो बचपन से ज्ञान में चले, पर जैसे जैसे बड़े होने लगे तो उस समय तो इतना साइंस के साधन थे नहीं, और उस समय मुरलियाँ भी जो आती थी एक मास पीछे, जो डेट होती उसके एक मास हम पीछे चल रहे हैं, ऐसी मुरलियाँ आती थी। पर हमको मुरली में इतना कुछ समझ में नहीं आता था, पर बचपन से योग बहुत अच्छा लगता था। बाबा से बातें करने में, बाबा से रू रूहान करने में, क्योंकि लौकिक में लौकिक बाप के बंधन फिर आने लगे, क्योंकि थोड़ा तो ज्ञान जब मिलता तो हमारे जीवन का परिवर्तन लोगों को दिखाई देता है। तो दो, एक छोटे भाई थे एक बड़े भाई थे, बीच में हम थी, तो बाप का बहुत लाड प्यार था, अपना बिजनेस था उस समय। तो कलकत्ते में उस समय दो मार्केट प्रसिद्ध थे, एक न्यू मार्केट एक बागरी मार्केट। तो पिताजी की दुकान थी बागरी मार्केट में, और बाबा की हिस्ट्री में सुना कि बाबा की न्यू मार्केट में दुकान थी। तो उसके कारण क्या कि जैसे जैसे बड़े होते गए तो बाप को थोड़ा मालूम पड़ता था कि हमारे चलन से व्यवहार से, क्योंकि जब छोटे थे तो एक बेटी होने का बाप को बहुत शौक होता था, अच्छा पहनाने का, अच्छा शौक सिंगार करने, क्योंकि दुकान ही फैंसी सामान की थी।
अच्छा।
क्रीम पाउडर, क्या क्लिप, नाखून पॉलिश, क्या ये सब क्या बोलेंगे उसको, तो इस प्रकार की दुकान थी। तो कुछ भी करे कोई मना नहीं थी, घर में माल पैकिंग होता था, दुकान में माल जाता था। पर मेरे को जैसे जैसे ज्ञान मिलता गया और बाबा से जो एक शांति की अनुभूति, एक प्रेम और एक प्यार की भावना बाबा से मिलने लगी, तो मेरे को ये जो ऊपरी, जो पहले थोड़ा छोटे थे 7-8 साल 9 साल की उम्र में क्लिप काटे चेंज करना रोज डेली, तो लौकिक बाप देखते ही रोज डेली तो फरमाइश करती थी कुछ ना कुछ चाहिए दुकान से, पर अभी कुछ दिनों से कुछ बोलती नहीं है, कुछ महीनों से कुछ मांगती नहीं है। तो उससे उनको मालूम पड़ने लगा कि कहीं इसका अभी बुद्धि हो कहीं और जगह है। पर उनको ये मालूम नहीं था कि ये कोई माता जी के साथ में ज्ञान में चलती है या माता जी के साथ सेंटर पर जाती है, मालूम नहीं था। क्योंकि बच्चे थे, स्कूल जाना है, और माताजी सेंटर जाती थी पर वो 7:30-7:45 बजे घर में आ जाती थी, और लौकिक पिताजी 7:45-8 बजे सो के उठते थे, तो उनको मालूम नहीं पड़ता था। और माताजी को हेल्प करने के लिए उस समय हम माताजी के लिए पहले से तैयारी करके रखते थे, सब्जी काट के रखना, चूल्हा उस समय तो कोयले के चूल्हे पर खाना बनता था है, 60 साल पहले, तो चूल्हा जला के रखना, काफ़ी तैयारी, तो बाप को मालूम नहीं पड़ा। पर जब वो हमारी सादगी उनको दिखाई देने लगी ना, जैसे बड़े होने 12-13 साल के, तो उनको लगने लगा कि इसमें कुछ चेंज है
जी।
मेरे को मतलब दुनिया की जो आकर्षण कहीं आज से 50-60 साल पहले वो अच्छी नहीं लगती थी। तो बाबा को हम बड़े प्यार से पत्र लिखते थे साकार बाबा को, और अपना दिल का कहें सब समाचार बाबा को पत्र में लिख के भेजते थे। तब तो बहुत थोड़े बच्चे थे, सेंटरों पर ज़्यादा नहीं थे, हम जब थे तो 15-20-25 ज़्यादा में ज़्यादा 25 भाई बहन हैं। तो बाबा को दादियाँ पत्र लिखती थी हर सप्ताह, मैं से परदादी तो सप्ते में 2-3 बार दिन फिक्स थे, सोमवार बुधवार शुक्रवार, तो बाबा को पत्र लिखती थी। तो हम लोग को भी जो कुछ मुख्य माताएं भाई बहनें होते थे ना, तो कहती थी तुम लोग को भी कुछ लिखना है, बाबा को समाचार देना है, तो हम लोग को भी खुशी होती थी कि अरे ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, तो बाबा को सब समाचार लिखते थे, स्कूल इतने बजे गए, पढ़ाई पढ़ी, माना सब। यदि लौकिक में कुछ बात होती थी बाप के साथ में तो वो भी बाबा को लिखते थे। तो ऐसे करके जब मैं 13-14 साल की थी तो एक बार हमको साकार बाबा ने पत्र लिखा।
अच्छा,
पत्र तो कई बार आए पर कई तो याद नहीं, पर कुछ एक दो बार की बात याद रह गई है। तो बाबा ने पत्र लिखा कि बच्ची है कौन ये आखिर। परदादी थी उस समय, 1964 में परदादी बॉम्बे से कलकत्ता आ गई, और सेंटर में तो लिपके छिपके जाते थे, शाम के समय जाते थे।
अच्छा।
स्कूल से छुट्टी 4 बजे होती तो 4:30 सेंटर पहुंच जाते थे।
सुबह माता जी जाते थे,
सुबह माता जी तो दिन में भी जाती थी 3 बजे 3:30 बजे। अच्छा। पर शाम को हम स्कूल से सेंटर पहुंच जाते थे, फिर माता जी के साथ लौट के 6:30, 6:15 वापस घर आ जाते। अच्छा। थे, क्योंकि पिताजी को मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो 10 बजे दुकान जाते थे, रात्रि 9 बजे आते, उसके बीच में हम कुछ भी करें। तो बाबा ने एक बार पत्र लिखा कि बच्ची कौन है जो इतना बाबा को प्यार से पत्र लिखती है। पर हम लोग की तो उस समय लगन बहुत ही एकदम विचित्र थी। तो बाबा ने पत्र लिखा कि बच्ची तुम कौन है, तुम अपना फोटो भेजो। अब हम लोग को तो इतना भी अक्कल नहीं कि फोटो कैसे खींचना है, स्टूडियो क्या होता है, ये भी जानकारी नहीं। तो लौकिक बड़े भाई थे, उनको फोटो का बहुत शौक था, फोटो खींचने का, खिंचवाने स्टाइल करने का बहुत शौक था। तो एक दिन बाबा युक्ति देता है, तो मैंने भाई को कहा भैया हमारे स्कूल में हमारा फोटो मांगा है, तो आप हमारा फोटो खींचो, मेरे को स्कूल में कुछ काम के लिए मांगा है, तो आप फोटो खींच के दो। तो भाई ने फोटो खींचा स्कूल ड्रेस में, वो फोटो मैंने साकार बाबा को भेजा मधुबन में माउंट आबू में, हम रहते थे कलकत्ते में, माउंट आबू में बाबा को भेजा। तो बाबा ने उस समय हमको बहुत अच्छे वरदान बाबा देते थे, कोई ना रूप से बच्ची होवनहार है, बाबा की बच्ची है, ऐसे करके पत्र बाबा ने लिखा। और उसके बाद जब 1967 में बाबा ने एक बार और पत्र, कई थे पर एक दो ही बातें याद रह गई हैं, तो 1967 में एक बार कलकत्ते में प्रदर्शनी लगी, तो बाबा ने लिखा कि जो बच्चे जासी पार्टी समझाएंगे बाबा उसको इनाम देगा। तो बच्चे थे 13-14 साल की उम्र थी उस समय, तो स्कूल से जब प्रदर्शनी समझाने जाते थे तो हमारी परदादी थी, हमको एक लकड़ी डंडा लेके खड़ा कर देती, जो बुजुर्ग भाई होते थे ना उनको समझाने के लिए। तो हमने एक सप्ताह के अंदर 40-50 पार्टी समझाई, बाबा को समाचार लिख दिया, बाबा ऐसे करके एक सप्ताह में प्रदर्शनी समझाई, सेवा किया है। हाँ। बच्चे थे, अभी बच्चों को तो लिखने में भी कुछ वो नहीं लगता है, बाबा को पत्र लिख दिया। तो बाबा ने उस समय हमको पत्र में लिखा कि बच्ची ये उड़ने वाली उड़न खटोली है। पर हमको ये मालूम नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ये कोई भगवान का वरदान है या आशीर्वाद है या बाबा की ब्लेसिंग है, कुछ चीज़ की नॉलेज नहीं थी, कोई समझ नहीं, मतलब इतने हम लोग इनोसेंट थे। बाबा के पत्रों को रख दिया संभाल के। पर जैसे जैसे बड़े होने लगे तो 17 साल 18 साल, तो फिर तो आप समझ सकते दुनिया के हिसाब से कन्या जब कुमारी बड़ी होती है तो बातें परिवार की भी आने लगती है। तो लौकिक बाप फिर हमको समझने लगे कि जरूर उसको कुछ माँ के साथ का जादू लगा। पर बाबा ने तो वरदान कई बार पत्रों में दिए, तो जब बाबा ने वरदान दिया तो पत्र को तो संभाल के रख दिया, पर उसका राज क्या वो तो जानते नहीं, वो तो बाबा जानता है। तो ऐसे करके हम 17-18 साल 1958 से लेके 1978 में हमको लौकिक बाप ने समर्पण किया, माना 18 साल हम और लौकिक माता जी बंधन में रहे
जी,
बहुत युक्ति से चले।
जी,
पर खाने पर पहनने पर कहीं जाने आने का इंटरेस्ट नहीं। माना मेरे को आज से 50-60 साल पहले दुनिया से अंदर से बैराग लगता था, कहते मन में ऐसे लगता दुनिया अच्छी नहीं है। परिवार में नीचे शादी होती तो मैं ऊपर कमरे में खिड़की में बैठती, मेरे को शोरगुल आवाज़ अच्छा नहीं लगता। तो लौकिक में पिताजी, लौकिक दादी थी, ग्रैंड मदर, तो वो उनको लगता था कि सारी दुनिया नीचे है और ये ऊपर कमरे में खिड़की में बैठ के क्या करती है, हमको अच्छा नहीं लगता शोरगुल आवाज़। तो उसके कारण उनको थोड़ा थोड़ा अंदर में महसूस होने लगा कि इसको थोड़ा ब्रह्मा कुमारियों का, इसकी माँ जाती है उसके साथ का इसको रंग लगा है। तो अंदर से एकदम बैराग बिरती जैसी थी दुनिया, माना अच्छी नहीं लगती थी। उसी संकल्प से जैसे अपने बड़े आयु होती रही तो उसके पुरसाद की रफ्तार भी फिर बढ़ने लगी और बड़े होने के साथ उतने पेपर भी आने शुरू हो गए और बाबा के तरफ लगन भी बढ़ती गई।
पेपर किस तरह के, वो ज़रा बताएंगे आप?
पेपर इसलिए आते थे कि लौकिक बाप को जब मालूम पड़ता था, क्योंकि हम कई बार युक्ति से, लौकिक फादर पांच भाई थे, सेकंड नंबर में पिताजी थे, तो लौकिक में एक थी तो कभी कभी अकेलापन लगता, कोई दूसरी बहन तो है नहीं, अकेली हूँ मैं। तो हमारे एक चाचा जी के ना 5-6 लड़कियाँ थी, 6
जी।
तो कभी कभी मन होता था ना उनके साथ, सरी की बहनें तो थोड़ा एक दिन रहूं, दो दिन रहूं, तो उनको मैं उनके पास जाके रहती थी।
अच्छा।
पर कई बार रहती थी, कई बार नहीं रहती थी
जी।
और लौकिक माता जी को मालूम तो सेंटर पर है, पर उनको कह देते थे फलाने उस चाचा के पास मैं चली गई। तो एक दिन क्या हुआ कि वही चाचा जी दुकान पर आए तो बोला पिताजी ने, रुक, प्यार से बचपन में रुको कहते थे
जी,
रुक्मणी नाम है पर रुको कहते थे, रुको तुम्हारे घर गई है ना तो उसको कल वापस ले आना।
अच्छा।
तो चाचा थोड़ा अंदर में हैरान हो गए, वो तो है नहीं, हम तो सेंटर पर रहे। तो वो थोड़ा शकल से भी समझ गए कि माना कुछ है, तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि अभी 6 लड़कियां भी, कोई एक कमरे में होगी दूसरे कमरे में, तो ध्यान नहीं दिया होगा। बोला ठीक है भैया, कल वापस भेज देंगे। लौकिक माता जी ने फिर दूसरे दिन कहा कि अभी तुमको 1-2 दिन हो गया, अभी तुम वापस घर आओ, और कहीं पकड़े जाएंगे चोरी तो डांट पड़ेगी। तो ऐसे करके ये पेपर कई बार आए।
अच्छा।
कई बार उस बात का सामना करना पड़ा। और एक बार तो ऐसे ही करते करते एक दिन, कभी रोज नहीं होता था, महीना 2-4 महीना में एक दूसरे चाचा जी के यहाँ चले, उनको एक लड़की थी, एक बड़े ताऊ जी के वहाँ वहाँ उनको एक लड़की थी, तो ऐसे करके कभी चले। पर एक दिन ऐसे पकड़े गए तो मालूम पड़ा कि ये लौकिक में नहीं गई है, बड़े भाई या छोटे भाई के घर में, ये जरूर सेंटर पर गई हो। तो सेंटर पर जाने का जब मालूम पड़ गया तो थोड़ा, तो तुम झूठ क्यों बोली मेरे से, इतना तुमने ऐसा क्यों कहा। माना हमको ये उस समय मालूम नहीं था कि लौकिक बाप का कोई हमारे में मोह है, ये हम नहीं जानते थे। हमको लगता था कि इतनी बात है कभी कभी, क्योंकि आज से 50-60 साल पहले ज्ञान है ब्रह्मा कुमारी के बारे में, जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ थी ना, उसके कारण लौकिक पिताजी कभी कभी गाली भी दे देते, उल्टा पुल्टा बोलते थे। हम लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी, दादियों के लिए, बड़ी बहनों के लिए या बाबा के लिए कोई बोले तो कहाँ सहन होगा। तो मन थोड़ा ऐसे, तो कभी कभी लगता था पिताजी कैसे हैं, मैं उल्टा पुल्टा बोलते, थोड़ा गुस्से वाले थे। और उस जमाने के लौकिक पिताजी BCOM पढ़े हुए थे और अपना बिजनेस था, तो थोड़ा अवमान था
जी।
तो उसके कारण कभी ऊट पटांग बहनों के लिए बोल देते, सेंटर के लिए, बाबा के लिए, भाई ऐसी कौन सी संस्था जो घर बार छुड़ाती है और भाई बहन बनाते, कई ऐसी मन में बातें होती थी। तो उसके कारण ये इस प्रकार के पेपर हमारे पास बहुत आए, पर उसके हम युक्ति भी बहुत रस्ते थे, पर कभी कभी चोरी पकड़ी भी जाती थी। पर बाबा के घर में जब समर्पण किया तब उन्होंने अपना जो उनके मन में जो मन के विचार थे, संकल्प थे कि मुझे मालूम नहीं कि मेरी लड़की कहाँ जाती है और कैसा जीवन बनाना चाहती, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, माना जो उनके मन में था सब कुछ सभा के बीच में बोल दिया।
ये भी हो सकता है कि जैसे वो आपसे मिलने नहीं आते थे, सिर्फ त्यौहार पे आप जाते थे, तो कहते ना कि जो इंसान ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो दिल से उतने मुलायम होते हैं, तो शायद उनके मन में ये भी हो कि मैं जितना मिलूंगा उतना मैं इमोशनल हो जाऊंगा, तो उस चीज़ को थोड़ा
नहीं, एक तो अपना थोड़ा बिजनेस था और अच्छा। मैं जिस सेंटर में रहती थी वो थोड़ा दूर था
अच्छा।
तो दुकान तो संडे के दिन ही बंद होती थी
जी जी जी, जी
बाकी अच्छा। दिन तो 10 बजे से जी जी। रात में 9 बजे तक तो दुकान 8:30 तक तो खुली रहती थी, तो उसके कारण आते नहीं थे। बाकी हाँ, बड़ी दीदी जब उनको कभी कहती थी कोई त्यौहार है तो तब संडे के दिन ही आते थे, बाकी समय
तो कभी ऐसा हुआ कि इमोशनल हुए हो आपसे जब मिले संडे को या कभी भी?
नहीं, ऐसे थोड़ा लगता तो था कभी कभी उनको, पर जब जीवन देखते थे ना हमारा तब उनको खुशी होती थी कि वास्तव में जीवन है तो ये जीवन है।
तो दीदी, ब्रह्मा बाबा के साथ जितना भी आपने वक्त बिताया, उनके साथ जब आप समर्पित हो गए थे, तो तब का जो माहौल था थोड़ा उसके बारे में बताइए, और अब जो माहौल है इसमें क्या आपको फ़र्क नज़र आता है?
ऐसा, जब हम लोग बाबा के घर में आए आज से इतने साल पहले, उस समय का सेंटर का माहौल और मधुबन का माहौल तो बहुत ही अच्छा था
जी,
क्योंकि हमारी सब दादियाँ थी
जी,
और ऐसे ही अनुभव होता था कि हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं और बड़ों की गोद में बैठे हैं
जी,
बाबा मम्मा की दादियों की छत्र छाया में बैठे हैं
जी।
आज के समय में मधुबन बाबा के घर में सेंटरों में भी विस्तार हो गया है
जी।
पहले बहनें सेवा करती थी, पर सेवा करते हुए हम देखते थे बहनों का स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं की स्थिति, स्वयं का योग, ज्ञान योग, उसके ऊपर बहनें बहुत मजबूत पावरफुल होती थी
जी।
आप कहेंगे आज के समय भी काफ़ी बड़े बड़े स्पीकर हैं, बहुत ज्ञान सुनाने वाले हैं, पर हम देखते हैं कि जो बाबा की मुरलियों में आता कि हम बच्चों को अपनी अवस्था बनानी है, स्वभाव संस्कारों को बदलना है, तो उस समय हम देखते थे कि हमने कभी ऐसे नहीं देखा क्लास में भी, ये माता कोई गरीब है, ये अमीर माता है, ये साधारण है, ऐसा कभी भी हमने दादियों में भी व्यवहार नहीं देखा
जी।
सबको समान सम दृष्टि से देखा, दादियाँ देख उतना ही प्यार देती चाहे कैसी भी माता हो, ये प्रैक्टिकल देखती
जी।
अभी क्या होता कि अभी जो समय वर्तमान चल रहा है यज्ञ में सेंटरों पर, अभी विस्तार काफ़ी हो गया, भाई बहनें काफ़ी हो गए, बहनें सोच के भी हम एक शरीर का सभी को स्नेह प्यार नहीं दे पाते क्योंकि विस्तार हो गया
जी।
और हम जो अपनी जितनी स्थिति बनाना चाहते हैं
जी
उतनी नहीं बन पाती है क्योंकि समय का कुछ अभाव हो गया है
जी।
पर हम देखते हैं कि बाबा तो हम बच्चों को समय के अनुसार, समय का इशारा तो हम सभी को मिल ही रहा है
जी।
बाबा दे ही रहे हैं, पर अभी समय के अनुसार बाबा हम बच्चों को स्वयं के ऊपर अटेंशन, स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं की उन्नति के लिए विशेष बाबा का फोर्स कहें इस चीज़ के ऊपर होता है
जी। जी, जैसे दीदी अभी ब्रह्मा कुमारी के वैसे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, जैसे अगर किसी को समर्पित होना हो तो पहले काफ़ी वक्त उनको वक्त दिया जाता है ना, उसके बावजूद भी जैसे आपने बताया कि विस्तार बहुत हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि जैसे जिस तरह की पहले अवस्था थी, जो रहते थे जिस तरह से भाई बहन, तो उसमें सुधार लाने के लिए कुछ बदलाव लेके आने ज़रूरी हो गए हैं?
ऐसा कि पहले जो हम लोग को बाबा या दादियाँ जो बातें सुनाती थी ना, हम लोग कभी भी बड़ों के आगे क्वेश्चन नहीं किया
जी,
क्यों क्या कभी मन में संकल्प नहीं आया। कभी बड़ों ने कोई दादियों ने कोई बात सुनाई होगी, सिखाई होगी, उसको उसके लिए सोचा होगा ये मेरे कल्याण के लिए
जी,
मेरी अच्छाई के लिए
जी।
इस बात को हमने अपने दिल में एकदम कंपल्सरी रखा हुआ था
जी,
कि मेरे को बड़े कुछ सीख दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं मेरे हित के लिए, मेरी अच्छाई के लिए। आज का जो समय है, हम बहनों को बहुत सिखाते हैं, सुनाते हैं, पर आज जो दुनिया का वातावरण, कई प्रकार की बातों के कारण बहनों में या भाई बहनों में कहें क्वेश्चन मार्क बहुत है
जी,
क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे। हम लोगों ने कभी भी दादियों ने बाबा ने जो कही होगी उस बात को सिर माथे समझ के चले
जी।
अभी हम किसी को कुछ सुनाने जाते सिखाते हैं, वो हमसे चार प्रश्न करता है, दीदी ये बात ऐसे होगी, ये बात कैसे हो जाएगी, कई बातें करते हैं। उसके कारण क्या होता कि जो बाबा हमको बड़े सिखा रहे हैं, अब हमने बड़ों से जो आज्ञा ली है, इतना साथ श्रीमत पर चले हैं, चल रहे हैं, तो हम तो बड़ों की बात सुनाएंगे। अभी की बहनें समझती कि किसी की सुनाई बातें दीदी सुना रही है या अपने मन से सुनाई बातें सुना रही हैं, पर हम मैं जो हर एक को जो कहती हूँ, हमने जो अपने जीवन में बचपन से बालकाल से जो कुछ बड़ों ने सिखाया है
जी,
उस कोई बात को सामने रख के मैं हर कार्य करती हूँ
जी, 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 जी।
जैसे मैं अपना जीवन का हर एक को सुनाती हूँ कि मेरा बचपन बाल्यकाल से 7-8 साल की उम्र से जो भी हम आए और बाबा के घर में जब आते थे दादियों के साथ, विशेष जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी जिनके साथ मैं 1964 से लेके 2013 तक रही, वो 2013 में इसी 15 मार्च को अभिक्त हुए, तो मेरा बचपन शुरू से जो बड़ों ने कहा बैठो तो बैठो, खड़े हो तो खड़े हो। और हम आपको बताएं, जब हम परदादी के साथ ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी के साथ रहना शुरू किया, मैं बचपन में बहुत इनोसेंट थी और बहुत नाजुक थी,
नहीं अभी भी हाँ बिल्कुल,
तो हमको दादी ने कहा कि देखो तुमको मेरे साथ रहना है ना, तो मैं बोलूँगी दिन को तो तुमको रात कहना पड़ेगा, दिन है पर दिन को मैं रात कहूँ तो तुमको रात मान के चलना पड़ेगा
जी जी।
अब सोचो इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी प्रॉमिस, पर शुरू से हाजी का पाठ पढ़ा
जी,
अपना कोई दिमाग विवेक कभी नहीं चलाया। और हम अभी भी कोई भी कार्य करते, कोई भी सेवा करते हैं, कहीं भी जाते हैं, मैं हमेशा अपने सामने बाबा को, मम्मा को, दादियों को रखती, सब दादियों को रखती हूँ
जी 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 जी,
क्योंकि हमने सबकी पालना ली हुई है, बड़ी दीदी उनकी मदर, क्वीन मदर, उनकी जो शिक्षाएं, गुलजार दादी, बड़ी दादी, जानकी दादी, संदेशी दादी, कुंदा, हमारे ईस्टर्न जोन में 5 दादियां थी,
अच्छा,
2 कलकत्ते में रहती थी, 2 बिहार में रहती थी और 1 संदेशी दादी, वो भी ट्रांस में जाती थी, स्टेट में 5 दादियां रहती थी
जी,
संभालती थी। तो ऐसे करके मैं जब कोई भी काम करती हूँ ना, तो मैं सभी दादियों को सामने रखती हूँ कि इन दादियों ने मेरे को क्या सिखाया
जी,
चलना सिखाया, सब्जी काटना सिखाया
जी, जी,
बोलना सिखाया, हर कर्म सिखाया।
तो आपको नहीं लगता कि, आपको कैसा लगता है ऐसे देखकर कि जो हमारी भागदौड़ है संस्था की, एक यूथ के हाथ में जो उनको बहुत जिम्मेदारी से निभाना चाहिए और वो जब आपकी बात नहीं सुनते, तो जब वो अपने आप को वो सुधारते नहीं हैं, तो फिर जो हम जैसे नॉर्मल जो लोग हैं तो हम किसको फिर फॉलो करेंगे?
जो अभी चल रहा है ना, आज की जो अपने भाई बहनें भी हैं
जी,
एक अहम भाव एक मैंपन है
जी जी।
मैं इस चीज के लिए बहनों को भी सिखाती हूँ, बोलती हूँ,
जबकि ब्रह्म कुमारी में सबसे पहली चीज ये सिखाई जाती है,
सिखाई जाती कि हम आत्मा है और बाबा हमारा परमात्मा है। ये शुरू का लेसन अभी तक चल रहा है
जी।
तो आज अहम भाव और मैंपन होने के कारण हम बाबा के बच्चे पृथक छू रहे हैं, पर जो हमारे से दूसरों को प्राप्ति होनी चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है।
क्या करना चाहिए फिर दीदी?
उसके लिए क्या हमको अपनी स्थिति बनानी है?
अच्छा, हमें
हमारी स्थिति बनेगी, हमारी स्थिति देख के, हमारी अवस्था देख के, तब उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा ना।
नहीं, पर हम कहाँ जाएंगे दीदी? आप तो, आपके पास तो आना मुश्किल है।
अभी आप सोचो, मैं कलकत्ते में 50 साल रही जीवन के लौकिक लाइफ में, और 20 साल से मधुबन में बैठी हूँ। मेरे को दादियों ने बिठाया, जानकी दादी, गुलजार दादी ने, जब हमारी परदादी 2013 में अभिक्त हुए, तो ट्रांस के पाठ के कारण दादियों ने बोला आपको कलकत्ता नहीं जाना। पर मैं आपको बताऊँ, मेरे को रिंचक मात्र भी संकल्प नहीं चला कि मैं कहाँ कलकत्ता 50 साल रही, और जिस सेंटर पर भी मैंने मिट्टी से लेके परदादी के साथ सोना तक सब कुछ किया, पर मेरे को कभी भी निरिंचक मात भी संकल्प नहीं चला
जी। फिर क्या करना चाहिए दीदी?
ये सब जो बातें होती हद की होती है
जी जी।
ये हद का संसार, जैसे दुनिया में आजकल, पैसे पहले के ज़माने में जब लड़की की शादी देते थे तो बड़ा परिवार देखते थे, संपन्न पर कितने भाई हैं ऐसे करके देखते थे ना। अभी की लोगों की सोच क्या हो गई है, या एक भाई होगा, एक बहन होगी, मतलब छोटा परिवार। तो इसलिए क्या, हमारी जो बुद्धि है ना, वो हद में हो गई। हम बैठे हैं तो बाबा के घर में बैठे, यदि कोई चीज़ किसी ने दी है तो बाबा की अमानत समझ के रखना है।
शो भी दीदी, जब किसी से कोई सवाल किया जाता है तो उस सवाल का जवाब मिलता ही नहीं है, ये जवाब मिल जाता है कि बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा ऐसा कहते हैं। कभी कभी ये भी शक होता है कि बाबा कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं।
जैसे मैं, मेरे को कभी कोई ऐसे बोलता है ना, कभी आप ट्रांस में नहीं गए, कुछ सुना दो, पर मैं बोलती हूँ कि जब तक मैं ट्रांस में नहीं जाऊँ, मैं कुछ, मेरे को बोलना आएगा नहीं। मेरे को माना बचपन से बात कम करने की आदत है, और मैं बिगर मतलब काम की बात तो कभी मेरे को अच्छी नहीं लगती, करना पसंद नहीं, ऐसे लगता है ये भी मेरी एनर्जी ख़त्म हो रही है
जी जी बिल्कुल।
तो इसलिए क्या है कि हम बाबा के बच्चों को भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जिसको बाबा कहते हैं कुछ, कोई भी काम करो, सोच समझ के काम करो। तो सोच को बदलेंगे तब तो हम वो कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे ना।
हम अगर जिनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये चलो ये कुछ करेंगे, ये नीचे वाले लोगों को बोलेंगे, फिर सुधार आएगा, ऊपर वाले ही मानने को तैयार नहीं, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इन्होंने ये सब करवाया, इनकी वजह से छूट मिली हुई।
इस बात के लिए कभी कभी हमको तो ऐसे लगता कि देखो बाबा जैसे कहते, कई बार कोई बात के लिए हम बड़ों को कुछ बोल देते हैं, मालिक बर के मालिकपन हो करके बोलना, और बोलने के बाद हम बालक बन जाए। क्योंकि हमारा काम है बड़ों को बात बोल देना
जी,
और उनको प्रैक्टिकल में करना, वो उनकी अपनी सोच और समझ
बस है। वही हाँ,
वो सोच के हम साक्षी हो जाएं। यदि मैं बहुत बातों में जाऊंगी तो मेरे ही मन और उलझ जाएगा।
सही बात है।
इसने क्यों कहा, कैसे कहा, किस लिए कहा, कई मेरे मन में क्वेश्चन मार्क आएंगे। तो हमारे तो मन में कभी कोई बात कोई होती है, फिर मैं तो बाबा के ऊपर छोड़ देती हूँ।
जी जी सही, ये भी सही बात है दीदी, पर फिर सुधार कैसे होगा, संस्था कैसे बची रहेगी?
ऐसा कि इसके ऊपर जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे पक्के होते ना, वो बाबा की हर बात को फॉलो करते हैं और बाबा की बातों को सामने रख के चलते हैं। इसलिए कई बार कहते हैं ना, बाबा कथनी और करनी में अंतर होता है, पर होना क्या चाहिए, कथनी करनी एक समान होनी चाहिए, अब कहते हैं ना, तो ऐसे ही यदि कोई हम किसको समझाते हैं, कोई सिखाते हैं और कोई नहीं करता ना, तो हम तो छोड़ देते, हम जे कहते हैं बाबा आप जानो, ये आत्मा जाने, इस आत्मा का भाग्य जाने।
जिसके बारे में मैं शुरुआत में आपसे बात करना चाहता था और सब लोग जानना चाहते हैं, आपका ट्रांस का जो पार्ट है वो थोड़ा सा बता दीजिए कि उसमें आप कैसे बात करते हैं, आपको क्या मैसेज आता है, क्या बाबा बोलते हैं कुछ या आपके विचार आता है, और क्या हमेशा वो सही होता है, थोड़ा सा बस, ज़्यादा तो नहीं।
बात है कि ब्रह्मा बाबा ने 1967 में, जैसे मैंने पहले सुनाया था कि बाबा ने पत्र के द्वारा ही हमको वरदान दिया कि बच्ची उड़ने वाली उड़न खटोली है, पर हमको उस समय कोई ज्ञान समझ नहीं थी। पर जैसे जैसे बड़े होने लगे और फिर 1973-74 से मैं सेंटर पर रहना शुरू किया, जो बताया ना लिपके छिपके रहती थी, तो रहने के बाद ज्ञान तो समझ में फिर आस्ते आस्ते आने लगा उम्र के हिसाब से। और बाबा ने जो वरदान दिया वो ट्रांस का पार्ट खुला हमारा 1977 में, 10 साल के बाद जब मेरी आयु 23-24 की
जी
होने लगी, तो वो भी अनायास, क्योंकि हमको बचपन से ज्ञान से जासी योग में बहुत इंटरेस्ट था। बाबा से बातें करना, बाबा से रू रुआन करना, घंटा डेढ़ कहाँ बैठ जाते थे योग में, कभी सेंटरों पर बहने बिठा देती थी योग कराने के लिए, तो कहाँ घंटा डेढ़ बैठ गए पता नहीं पड़ता था, गुम हो जाते थे। तो उस समय बाबा सूक्ष्म में कोई ना कोई दृश्य दिखाता था, कभी स्वर्ग का, कभी बैकुंठ का, कुछ चीज़ें, पर समझ नहीं पाते थे कि ये कोई ट्रांस है, इस चीज़ का अनुभव नहीं था। तो जो कलकत्ते में हमारे साथ जो दादी रहती थी, संती दादी, विश्व किशोर भाव यज्ञ पूरा जानता उनकी युगल, वो साकार बाबा के साथ अंग संग रही, लौकिक में भी भतीजे की बहुत ही संती दादी, और यज्ञ में भी बाबा जब 69 तक थे यज्ञ में भी वो बाबा के साथ ही रही। बाबा के अभिक्त होने के बाद 1970 या 1971 में कलकत्ता गई थी, तो 1973-74 से जब रहना शुरू किया तो मैं दादी को थोड़ा सुनाया करती थी।
अच्छा।
कि दादी मुझे ना योग में कुछ दिखाई देता है, पर ये मालूम नहीं कि कभी स्वर्ग देखती थी, कभी कृष्ण को देखती, पर ये जानती नहीं थी कि कोई ये साक्षात्कार है या ट्रांस का पार्ट है, जानती नहीं थी
जी।
तो दादी सुनती रहती थी। तो एक दिन ऐसे सेंटर में किसी का भोग था बड़ा, तो दादी को थोड़ा अस्थमा दम्मा होता था, तो उस दिन थोड़ा उनको दम्मा होने लगा, शाम का टाइम था, तो दादी मेरे को कहने लगी रुक्मणी आज तुम भोग लगाओ। तो मैंने बोला दादी मैं तो भोग लगाती नहीं, कभी गई नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि मैं आज तुमको कहती तुम आज भोग लगाने बैठो, बाबा तुमको खींच लेगा, पर निश्चिंत रहना, निरसंकल्प, कोई संकल्प नहीं चलाना। तो जब पहली बार बैठी और बाबा को मन ही मन में कहा बाबा अभी मेरी बुद्धि की डोर आपके हाथ में है, अभी आप मुझे जैसे खींचो, कैसे जाना है, कैसे नीचे उतरना मुझे मालूम नहीं, बस बाबा की याद में बैठी और बुद्धि को एकदम हल्का लाइट किया और निरसंकल्प किया, बाबा ने खींच लिया।
अच्छा।
खींच लिया बाबा ने, बहुत अच्छा, पहली बार गई तो बहुत अच्छा दृश्य दिखाया। मेरे पीछे पीछे दादी भी बैठी थी, वो भी खींच गई क्योंकि वो तो ट्रांस में जाने के अभ्यासी थी। तो जब नीचे उतरी तो दादी ने कहा कि अभी सुनाओ तुमको बाबा ने क्या दिखाया। तो जो देखा बाबा फूलों के बगीचे में ले चल, ऐसे करके दृश्य दिखाया। तो दादी ने बोला कि देखो तुमको याद नहीं है बाबा ने तुमको वरदान दिया है उड़न खटोली का। मैं बोला मैं तो जानती नहीं हूँ कि वरदान है या आशीर्वाद है, ठीक है दिया होगा बाबा ने, पत्र लिखा था बाबा ने, पर मतलब इस चीज़ का भी हम लोग को ज्ञान नहीं था, इतने इनोसेंट थे। पर ऐसे करके बाबा ने कई बार ट्रांस में भी कई अनुभव कराए, कई बात सुनाई, उसके कारण क्या हुआ कि आस्ते कलकत्ते में तो भोग लगाते थे, उसमें हमारा अपना भी निश्चय और बाबा के प्रति प्यार और बढ़ता गया। क्योंकि जिस चीज़ का हमको कभी, क्योंकि दुनिया की नॉलेज तो थी नहीं, बचपन में ज्ञान में आए तो दुनिया तो कभी देखी नहीं क्या दुनिया में होता है, पर कई बातें बाबा ऐसे टच कराता था, अनुभव कराता था। इसके ऊपर मैं फिर सुनाती हूँ कि जब ट्रांस में जाते हैं तो एक तो निर्संकल्प अवस्था को करना पड़ता है हमको, अपने आप को जैसे गुरुवार लगाना, तो शुक्रवार शाम से रात से अपने को माइंड को बहुत हल्का लाइट रखना पड़ता है और अंदर में संकल्प रखते हैं कि बाबा के पास जाना है, स्थिति बनानी पड़ती है, एकांत अंतर्मुखी, तो तभी बाबा खींचता है। यदि मेरी बाहर मुक्ता या कोई संकल्प चलेंगे तो बाबा की बात को हम कैच नहीं कर पाएंगे। तो जाते हैं तो बाबा हमें वतन में सूक्ष्म वतन वासी एक फरिश्ते के रूप में बादलों के बीच में दिखाई देता है।
अच्छा।
जाने के साथ उसमें कई बार कई तरह के दृश्य बाबा दिखाता है, समय के अनुसार, राखी हुई, दिवाली हुई, कोई त्यौहार का।
तो उनका ऐसे ही चेहरा होता है, मतलब जैसे
बाबा का चेहरा ऐसे होता है।
अच्छा।
उस समय बाबा का जैसे मूवी एक्शन होता है ना, मूवी एक्शन के सारे बाबा का मुंह चलता है,
जो जो बोलते हैं।
हाँ। और उसमें कई बार कई शब्द आते जाते हैं, अक्षर, जैसे बाबा ने आज बोला कि बच्चों को अंतर्मुखी या सहन शक्ति धारण करनी, वो शब्द वो हमारे सामने आते जाते हैं। उस बात को हमको, बाबा की बात को कैच करना पड़ता है।
अच्छा।
समझना पड़ता है
जी।
क्योंकि जैसे शुरू में जब जाना शुरू किया तो कई बार तो आधा संदेश सुनाती थी, आधा नीचे उतरते उतरते भूल भी जाती थी
जी, जी।
तो वो भी सुना देती थी, क्लास में भूल गई, क्योंकि बच्चे थे, इतना तो ज्ञान नहीं समझ में आता था। पर जब बाबा बोलते हैं और वो सारी तस्वीरें, जैसे भोग की थाली कहें, किसी के प्रति भोग है, वो आत्मा का चेहरा हमारे सामने इमर्ज हो जाता है, बाबा इमर्ज करता है।
अच्छा।
किसकी याद होती है वो चेहरे आ जाते हैं।
अच्छा।
और उसका भी जैसे मूवी एक्शन चलता है, उस बात को हमको कैच करना पड़ता है।
अच्छा।
समझना पड़ता है, इसलिए इसके लिए हमारी बुद्धि को बड़ा स्वच्छ और साफ
जी,
और बहुत माइंड को बहुत फ्री और हल्का रखना पड़ता है
जी 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 जी,
तब तो बाबा की बात को कैच कर सकेंगे ना
जी, जी।
तो हमारे सामने वो दृश्य सीन आती जाती है और उस बात को हम बड़े सही रीति से कैच कर लेते हैं
जी।
और फिर वही बाबा का जो संदेश होता है वो हम फिर नीचे आके सभा में सुना देते हैं
जी।
पर किसका किसी का विशेष होता है तो उसको अलग से सुनाते हैं, बाकी सभा में जो थोड़ा जो सुनाना होता है वो सभा में सुना देते हैं।
हाँ ठीक है दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओम शांति।
ओम शांति।
तो ये था हमारा दिल से दिल तक का आज का एपिसोड रुक्मणी दीदी के साथ, जो एक सबसे खूबसूरत और सबसे एक खास चीज़ जो मैंने सीखी और मुझे लगता है कि आप सब ने भी सीखी होगी, कि कैसे उन्होंने अपने बड़ों की बात को कभी भी मना नहीं किया। जो भी चीज़ बड़ों ने कही उन्होंने बिना अपना दिमाग लगाए हर चीज़ को फॉलो किया, और देखिए आज वो कहाँ पे हैं। उन्होंने खुद ये चीज़ कही कि आजकल जो ब्रह्मा कुमारीज में जो सरेंडर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उन्हें भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे उनकी दीदियाँ अपने बड़ों की बात सुनती थी, बिल्कुल उसी इंटेंशन से सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, और वो करते भी हैं लेकिन और बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने कितनी खूबसूरत तरीके से एक चीज़ बताई कि जब उनको बाबा का लेटर आता था तो वो किस तरह से वेट करते थे, किस तरह से उन्होंने छुप छुप के सेंटर जाना शुरू किया, किस तरह से उनका इंटरेस्ट बढ़ा, कितनी ईमानदारी से उन्होंने अपनी मोहब्बत में कभी भी कमी नहीं आने दी, और आज भी वो उसी प्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को ना सिर्फ जी रहे हैं बल्कि आज भी यही इंटेंशन वो चाहते हैं, यही उनकी चाहत है कि जिस वजह से ब्रह्मा कुमारीज की शुरुआत हुई थी उस वजह को कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो प्योरिटी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। इससे हम सबको मेरे ख्याल से ये सीखने को मिलता है कि हमें भी अपनी लाइफ में कभी भी अपने बड़ों की बात का कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आज का एपिसोड आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं दिल से दिल तक के अगले एपिसोड में हमारे एक नए मेहमान के साथ। ओम शांति।